नमस्कार भारत, तारीख 5 जून दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अमेरिका में साइबर हमला, लाखों सरकारी कर्मचारियों की जानकारी है हैकरों के पास। मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली।
बहुत हेवी एम्बुश था ये और इसमें काफी कैजुअल्टी हुई है। अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 18 लोगों की मौत हुई है और 16 इंजर्ड।
गर्मी के चलते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाकों में कई मौतें हुई, पर यहां बड़ी तादाद ऐसी भी जिनकी मौतों के बारे में राज्य सरकार को नहीं पता।
समर स्ट्रोक जो हुआ नहीं कहने का इंक्वायरी करो, जो डॉक्टर ट्रीट करे सो डॉक्टर को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो।
साथ ही होगी वॉशिंगटन डायरी और अखबारों की सुर्खियां भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अनुराग शर्मा से। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि हैकरों ने 40 लाख सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी चुरा ली है। ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ने कहा कि उसे अपने कंप्यूटरों पर संदिग्ध गतिविधियों के बारे में अप्रैल में पता चला। ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट हर साल सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देने वाले लोगों की पृष्ठभूमि की जाँच करता है। अमरीकी अधिकारियों को शक है कि ताज़ा हमला चीन से किया गया था। फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ आयरलैंड या FAI ने माना है कि फीफा ने उसे करीब 50 लाख यूरो दिए थे। फीफा ने यह पैसा इसलिए दिया था ताकि फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ आयरलैंड उस पर 2010 के विश्व कप के क्वालिफायर में एक गलत फैसले को लेकर कानूनी कार्रवाई न करे। फ्रांस आयरलैंड के मैच में फ्रांस के स्ट्राइकर थियरे हेनरी का हाथ लग जाने के बावजूद रेफरी ने एक गोल मान लिया था। इस गलत फैसले की वजह से आयरलैंड की टीम विश्व कप में जगह नहीं बना सकी थी। FAI के मुख्य कार्यकारी जॉन डेलनी ने कहा,
We felt we had a legal case against FIFA because of how the World Cup hadn't worked out for us.
हमें लगा कि FIFA के खिलाफ हमारा कानूनी मामला बनता है, तो उस दिन मैं सेप ब्लेटर के पास गया और उन्हें भला बुरा कहा। फिर हमारा समझौता हो गया। ये बात गुरुवार की है और सोमवार तक तो समझौते पर दस्तखत तक हो चुके थे। ये समझौता हमारे लिए अच्छा था। जॉन डेलनी के शब्द। मैगी नूडल्स के सुरक्षित होने के दावे करने के बावजूद नेस्ले ने मैगी नूडल्स को बाजार से हटाने का फैसला किया है। नेस्ले ने एक बयान जारी कर कहा है कि उपभोक्ताओं में एक भ्रम का वातावरण बना है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि उसने इसके सुरक्षित होने के बावजूद इसे बाजार से हटाने का फैसला किया है। मैगी में कथित रूप से मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मौजूदगी और निर्धारित सीमा से ज्यादा सीसा होने की वजह से इसके सुरक्षित होने पर सवाल उठ रहे हैं। भारत को विश्व व्यापार संगठन में एक मामले में अमेरिका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। विश्व व्यापार संगठन ने कहा है कि भारत अमरीकी मुर्गियों और अंडों का आयात गलत ढंग से रोक रहा है। उसने ये भी कहा है कि बर्ड फ्लू की भारत की चिंताएं निराधार है। भारत ने साल 2007 में व्यापार प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि विश्व व्यापार संगठन ने कहा है कि भारत के नियम अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप नहीं हैं। अमरीकी सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। भारत को 1 से 1.5 साल में इस फैसले को लागू करना होगा। अफगानिस्तान की सेना का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने कम से कम 10 तालिबान चरमपंथियों के सिर कलम कर दिए हैं। माना जा रहा है कि पूर्वी अफगानिस्तान में ये घटना हुई है और तालिबान चरमपंथियों के इस्लामिक स्टेट के हाथों मारे जाने की यह पहली घटना है। काबुल में BBC संवाददाता के अनुसार इस्लामिक स्टेट के हाथों तालिबान चरमपंथियों की मौत के बारे में तब पता चला जब बुधवार को अफगान सेना की 21वीं कोर की एक रिपोर्ट गलती से मीडिया को भेज दी गई। ग्रीस ने कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कर्ज की एक किस्त का भुगतान अभी नहीं करेगा। ग्रीस को IMF को 30 करोड़ यूरो चुकाने हैं, लेकिन ग्रीस सरकार का कहना है कि वो इसका भुगतान महीने के आखिर में करेगी। BBC के आर्थिक मामलों के संवाददाता का कहना है कि ये ऋणदाताओं पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी सुन रहे हैं। मैं मोहनलाल शर्मा। जैसा कि अभी अभी आपने समाचारों में सुना कि अमरीकी अधिकारियों के मुताबिक हैकरों ने एक साइबर हमला किया है और देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी चुरा ली है। कार्यक्रम में सीधे शामिल कर रहे हैं ब्रजेश उपाध्याय को वॉशिंगटन से। ब्रजेश, सबसे पहले तो यही बताएं कि ये हमला किस तरह से हुआ।
देखिए मोहनलाल, ये साइबर अटैक ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, जो यहाँ के एक तरह से केंद्रीय कर्मचारियों का जो मानव संसाधन विभाग है, उस पर हुआ है। और उनका कहना है कि लगभग 40 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित हुए हैं और उनसे संपर्क किया जा रहा है। जो बयान जारी किया है उन्होंने, उसके अनुसार साइबर सुरक्षा के लिए नए सिस्टम लगाए गए थे पिछले महीने, 2-3 महीने पहले, और उन्हीं के जरिए अप्रैल में उन्हें इस साइबर अटैक का पता चला। लेकिन अंदाजा है कि हैकरों ने कुछ महीने पहले से ही सिस्टम में घुसपैठ कर लिया था। मेरी एफबीआई के प्रवक्ता से बात हुई है और उन्होंने कहा कि वो सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इसकी तहकीकात कर रहे हैं और वो इस हमले को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और जो भी इसके पीछे होगा उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अंदाजा है कि लगभग सभी केंद्रीय विभाग के कर्मचारी इस हमले से प्रभावित हुए हैं।
ब्रजेश, कौन है इसके पीछे? इतना बड़ा हमला इतना आसान नहीं होता।
देखिए, अमरीकी मीडिया तो सीधे तौर से चीन पर उंगली उठा रही है, लेकिन यहाँ कोई सरकारी विभाग इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से कहा है कि इस बात की जांच हो रही है कि हमला चीन से तो नहीं हुआ, लेकिन अमरीकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मैरी हार्फ ने इसकी पुष्टि नहीं की है और कहा है कि दुनिया में कई देश हैं जो इसकी क्षमता रखते हैं और बदकिस्मती से यह संख्या बढ़ती जा रही है। और ये आपको याद दिला दूं कि पिछले मार्च में और फिर नवंबर में भी इस तरह का साइबर हमला हुआ था अमरीकी सरकारी दफ्तरों पर।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश उपाध्याय। तो अमरीका में एक साइबर हमला हुआ है जिसमें बताया जा रहा है लाखों सरकारी कर्मचारी की जानकारी जो है वो हैकरों के पास है। रुख भारत का करते हैं। मणिपुर के चंदेल जिले में कल सेना के एक काफिले पर हुए हमले में कम से कम 18 लोग मारे गए, जवान थे ये। यह हमला उस समय हुआ जब सेना का काफिला एक छोटे कस्बे से राज्य की राजधानी लौट रहा था। म्यांमार की सीमा से लगते इस राज्य में कई चरमपंथी गुट सक्रिय हैं। मणिपुर के DGP शाहिद अहमद के मुताबिक अब तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।
ये चंदेल डिस्ट्रिक्ट के इंटीरियर में हुई है। वो एक जगह है टेनापाल, इम्फाल से करीब 110 किलोमीटर की दूरी है। बहुत हेवी एम्बुश था ये और इसमें काफी कैजुअल्टी हुई है। अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 18 लोगों की मौत हुई है और 15 इंजर्ड है। काफी ऑपरेशन, मैसिव ऑपरेशन हो रहे हैं, उनको तलाश किया जा रहा है।
ये थे मणिपुर के DGP शाहिद अहमद। मणिपुर में सेना पर हुए हमले के बाद हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने पूर्वोत्तर मामलों के जानकार संजय हजारिका से संपर्क साधा और पूछा इस हमले में किन संगठनों का हाथ होने के संकेत है और ये हमला सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है।
अभी तक कोई भी गुट ने नहीं कहा है कि हमने ही क्या है। पहले तो सुना था कि PLA एक गुट है, उसने मना कर लिया और दूसरी ग्रुप जो है मेन ग्रुप्स जो है UNLF और बाकी किसी ने इस एक्शन की क्रेडिट नहीं लिया है अभी तक।
तो बहुत सुदूर इलाका था, अभी तक पूरी जानकारी भी निकल कर नहीं आ पाई है और ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी के साथ ये हमला किया गया।
जो एम्बुशेस होते हैं वो तो तैयारी के साथ ही होते हैं, इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। गेरिला एम्बुश और दूसरी साइड शायद तैयार नहीं था, सिक्योरिटी फोर्स की बात कर रहा हूँ, उनको शायद पता ही नहीं चला कि ऐसा कोई खतरे हैं इस रास्ते पे।
इसको लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, खासतौर पर जिस तरह का हमला ये हुआ है जिसमें IED का इस्तेमाल किया गया है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से ये इंसर्जेंसी बढ़ रही है मणिपुर में?
बात ऐसे है कि मणिपुर में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की जो कहते हैं एंटी स्टेट मूवमेंट्स जो है, आर्म मूवमेंट्स, वो तो कम हो गया था। इतनी बड़ी इंसिडेंट बहुत दिन महीनों के बाद हो रहा है। दूसरी घटना हुई है जिसमें आम आदमी को ऊपर हमला हुए है, लेकिन जैसे आर्मी या सिक्योरिटी फोर्स SF के ऊपर हमला, ऐसे बहुत दिनों के बाद हो रहा है। ना नागालैंड में हुए हैं, ये रिसेंटली मेरे ख्याल 4 जवानों को, असम राइफल्स का जवान को मारा गया था, ये खपलंग ग्रुप ने अटैक किया। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इंसिडेंट जो हुए हैं वो मेरे ख्याल से विदिन 24 hours और या 48 hours ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शंस जो हिल्स में हुए थे, मणिपुर की पहाड़ी इलाके में। इसकी 24 घंटा खत्म होने के बाद ही ये हिंसा की घटना हुई है। और दूसरी है कि ये हमको सोचना पड़ेगा कि नागालैंड में एक गुट है NSCN, नागा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खपलंग ग्रुप, जिसने करीब 2 महीने पहले भारत सरकार के साथ जो सीज फायर जो था वो उसने तोड़ दिया उनकी तरफ से। और ये 2-3 घटना अटैक्स जो हमले जो है उसने किया नागालैंड में। अभी कौन सा गुट अभी है इस लेटेस्ट इंसिडेंट में वो अभी तक तो स्पष्ट नहीं है। एक और चीज है कि मिस्टर खपलंग जो है NSCN का, उनकी जगह में ना जो नागा एरिया है बर्मा में, क्योंकि वो बर्मा की रहने वाला है, बर्मा की नागरिक है, उनकी जगह एनएससीएन का तो लोग तो है ही है, लेकिन उल्फा के भी है और मणिपुर के दो तीन गुट भी वहाँ ट्रेनिंग और वहाँ कैंप्स करते हैं और वो उनको और मिस्टर खापलांग को प्रोटेक्शन देते हैं और वहाँ रहने देते हैं बर्मा में।
पूर्वोत्तर मामलों के जानकार संजय हजारिका बता रहे थे कि मणिपुर में और उससे आसपास के सटे इलाकों में कौन कौन से चरमपंथी गुट सक्रिय हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन गए थे तो उन्होंने सीमा विवाद हल करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति साफ करने का प्रस्ताव रखा था। चीन ने लगभग इसे नकार दिया है। चीनी विदेशी विभाग में एशियाई मामलों के प्रभारी उपनिदेशक हुआंग जियान ने भारतीय मीडिया से बातचीत में सीमा पर शांति के लिए एक समझौते की बात की है। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने ही बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार साइबल दास गुप्ता से संपर्क साधा और पूछा कि चीन के इस रुख से क्या संकेत मिलता है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब 15 तारीख को शिंगवा यूनिवर्सिटी के बच्चों को संबोधित किए तो उन्होंने कई बातें कही, उसमें से एक बात उन्होंने एलएसी वाली कही, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये जाहिर है कि बच्चों को तो बॉर्डर और एलएसी के बारे में इतना पता नहीं होता है, लेकिन वांग यी जो चाइना की विदेश मंत्री है वो सामने बैठे हुए थे, तो संबोधित तो असल में वो वांग यी को कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जब तक ये साफ नहीं हो जाता कि फिजिकली कौन किसने कंट्रोल में है तब तक तो हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे, भाई आप हमारे अंदर घुसपैठी कर गए, हमने आपके ऊपर कर दिया। तो एक वक्त आ गया है कि जब इस पर क्लैरिफिकेशन हो जाए, एक बार क्लैरिफिकेशन हो जाए तो हमारे बॉर्डर के कई ऐसे मसले हैं, लेकिन इस मसला एक बार क्लियर हो जाए तो बाकी मसले आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके जवाब में वांग ने ये कहा, हम ये क्लैरिफिकेशन पहले करने की कोशिश कर चुके हैं, उससे मामला और पेचीदा हो गया, इसीलिए हम अभी इसको क्लैरिफाई करने से पहले हम ये सोचेंगे कि इससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं। चीन कम से कम फिलहाल तो मोदी साहब की इस बात को स्वीकार कर दिया है। अगर क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं तो 18 राउंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स के हो चुके हैं गत 7-8 साल में, तो ये 18 राउंड किस तरह से आगे बढ़ेगा जब तक कि दोनों तरफ ये साफ ना हो जाए कि कौन कहां खड़े हैं।
लेकिन जैसे साउथ चाइना सी का भी एक मामला आया था जहां भारत वियतनाम के साथ मिलकर तेल की खोज कर रहा है, तो उसको भी चाइना ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन जिस तरह से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना कॉरिडोर बना रहा है उसका वो समर्थन करता है दूसरी तरफ, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं?
ये सवाल भी उठाया गया। यहां एक विरोधाभास इसलिए आता है कि कुछ समय पहले, 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले मोदी साहब के आने से पहले एक वाइस मिनिस्टर ने हमको ये कहा था कि हम तो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, वी आर डूइंग बिजनेस, उसमें गलत क्या है? लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ के लोगों को जो तकलीफें हैं, जो आम गरीब आदमियों को समस्या है उसको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैसे चीन का बहुत पुराना स्टैंड रहा है क्योंकि उस एरिया में बहुत फ्लड वगैरह आते रहते हैं,
लेकिन
इसका अभी बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ। एक पत्रकार ने ये कहा, बल्कि मैंने ये कहा कि ये आपका व्यवसाय अच्छा और हमारा व्यवसाय खराब, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, अच्छा खराब का सवाल नहीं, हमारा ये मत है और आपको हम बता रहे हैं।
ये थे बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार साइबल दास गुप्ता। और अब कार्यक्रम में हम आज के अखबारों की बात करेंगे। अनुराग, अखबार आप पढ़ चुके हैं, बताइए क्या कह रहे हैं अखबार?
जी मोहनलाल जी, आज के ज़्यादातर अखबारों की सुर्खियां मैगी पर रोक से जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात सुर्खियां बताने से पहले ये बता दें कि अमर उजाला और टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा शायद किसी भी अखबार ने मैगी के बाजार से हटने को खबर नहीं बनाया है। शायद इसलिए क्योंकि नेस्ले का बयान तब आया जबकि बाकी अखबार छप चुके थे। नई दुनिया ने लिखा है, 4 और राज्यों सहित नेपाल में प्रतिबंध। नई दुनिया ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान छापा है, उनका कहना है कि राज्यों से रिपोर्ट मिलने पर केंद्र करेगा फैसला। दैनिक भास्कर लिखता है कि गोवा, पंजाब, मध्य प्रदेश में दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं, साथ ही तमिलनाडु में कुछ और कंपनियों की नूडल्स की बिक्री पर भी 3 महीने की रोक लगाई गई है। दैनिक भास्कर ने यह भी छापा है कि नेस्ले की बाजार पूंजी 1738 करोड़ कम हो गई। हिंदुस्तान ने भी यही कहा है, हिंदुस्तान ने लिखा है कार्रवाई, तीन और राज्यों ने मैगी की बिक्री पर रोक लगाई। जेपी नड्डा का बयान हिंदुस्तान ने भी छापा है और हिंदुस्तान ने ये लिखा है दिल्ली से नहीं उठा स्टॉक। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि नेस्ले को अपना स्टॉक हटाने के निर्देश देने के बावजूद कंपनी ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हालांकि ये खबर अब थोड़ी पुरानी लगती है क्योंकि नेस्ले ने अपना स्टॉक हटाने का
की घोषणा की है।
जनसत्ता लिखता है अमिताभ माधुरी व प्रीति जिंटा को नोटिस। ये नए नोटिस हैं, ये नोटिस तमिलनाडु उपभोक्ता मंच ने दिए हैं
और ये नोटिस जो है वो कल वाले नोटिस से अलग है
जी। और ये कहा गया कि ये मांग की गई है कि इन सितारों से कहा जाए कि वो इस ब्रांड को एंडोर्स ना करें। हालांकि अमिताभ बच्चन ये कह चुके हैं कि वो मैगी को अब एंडोर्स नहीं करते, वो मैगी का विज्ञापन 2 साल पहले किया करते थे। इसके अलावा मणिपुर में सेना के काफिले पर हमले को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। अमर उजाला लिखता है मणिपुर में सेना पर सबसे बड़ा हमला, 18 जवान शहीद। हिंदुस्तान ने भी यही लिखा है मणिपुर में सेना के 18 जवान शहीद। हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान के मुताबिक NSCN की केंद्र सरकार के साथ वार्ता विफल हो चुकी है। इस संगठन की चंदेल सहित पहाड़ी इलाकों में अच्छी पैठ है और करीब 2000 उग्रवादी इससे जुड़े हुए हैं। बिहार में चुनाव नज़दीक हैं, पास कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं। इससे जुड़ी एक खबर जनसत्ता ने एंकर में छापी है। शीर्षक है सिर पर चुनाव तो आम लीची को लेकर टकराव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तकरार की ये खबर है। मांझी का कहना है कि उन्हें आम तोड़ने नहीं दिया जा रहा है, हालांकि वो मुख्यमंत्री निवास में रह रहे हैं। ये कैसा कानून है कि मुझे
उसमें तीन चीज़ें, आम है, लीची और कटहल।
जी बिल्कुल। और इसको लेकर कार्टून भी जनसत्ता ने छापा है जिसमें एक व्यक्ति को शपथ लेते हुए दिखाया गया है और कहा गया है कि मैं बिहार की जनता की शपथ की सुरक्षा करूंगा और साथ ही तमाम आम, लीची और कटहल की भी सुरक्षा करूंगा।
अनुराग, आप कार्टून का जिक्र कर रहे हैं, मैं भी एक कार्टून पढ़ देता हूं। और ये जो कार्टून है ये नई दुनिया का है और ये है कुछ बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं
जी।
और उसमें लिखा है कि आज फिर से हमें भूखे रहना पड़ेगा, आज यहाँ पर सिर्फ मैगी ही मैगी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। और अब हम सुनेंगे कार्यक्रम में ब्रजेश उपाध्याय की वॉशिंगटन डायरी।
पूरी दुनिया में लोग तरसते हैं कि सरकार उनकी सुने, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। यहाँ अमेरिका में सरकार पिछले 14 साल से जनता को सुन रही थी, बेहद करीब से, उनके इश्कबाजी से लेकर रोटी, कपड़ा, मकान की जद्दोजहद सब के बारे में सुन रही थी। लेकिन ये जो कुछ नाशुक्रे लिबरल टाइप के लोग हैं ना, उनसे जनता की ये खुशी देखी नहीं गई। 2 सालों से, जब से NSA के कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन ने पूरी दुनिया को ये बात बता दी कि अमेरिकी सरकार अपने लोगों की सुनती है, तब से ओबामा के पीछे पड़े हुए थे कि सुनने पढ़ने की आदत छोड़ दो। बेचारे ओबामा भी बहकावे में आ गए, लेकिन वो कुछ करते उससे पहले ही कांग्रेस ने पिछले रविवार को बरसों से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। ज़रा सोचिए क्या गुजरी होगी अमरीकी जनता पर, बिल्कुल बेसहारा महसूस कर रही थी। और उनसे भी बुरा हाल था बेचारे NSA के मुलाजिमों का, जो दिन रात कभी लोगों के फ़ोन तो कभी ईमेल पर नज़र रख रहे होते थे। एक साहब से इन लोगों की मायूसी देखी नहीं गई तो उन्होंने सलाह दी कि लोगों के फ़ोन और ईमेल पर नज़र नहीं रख पाते तो वक्त गुजारने के लिए उनके फेसबुक अपडेट्स देखने शुरू कर दो, कुछ तो राहत मिलेगी। वो तो भला हो कांग्रेस का कि उन्होंने एक नई परंपरा शुरू करने की मंजूरी दे दी, उसमें काफ़ी कुछ पहले ही जैसा है, सिर्फ जनता और NSA के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई। और जब भी NSA को जनता की ज़िंदगी सुनने पढ़ने का दिल करेगा वो इस दीवार को लांघकर ऐसा कर सकती है। यानी अब सारे फ़ोन और ईमेल रिकॉर्ड्स टेलीफोन कंपनियों के पास रहेंगे और NSA अदालत की मंजूरी लेकर उन्हें सुन पढ़ सकेगी। जनता की तो जान में जान आई है। एक सर्वे में 60% से ज़्यादा अमरीकियों ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि सरकार उनकी ज़िंदगी के इतने करीब रहती है। उनका कहना है कि अब जब इस्लामिक स्टेट का खतरा इस कदर मंडरा रहा है तो ऐसे में कांग्रेस को NSA और जनता के बीच दूरी नहीं बढ़ानी चाहिए थी। जनता हो तो ऐसी हो। अगर आप लोगों ने जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 नहीं पढ़ी है तो समय निकालकर ज़रूर पढ़िएगा। उन्होंने 50-55 साल पहले एक ऐसे ही समाज की कल्पना की थी और उसे सच होता देख उन्हें कितनी खुशी होती। उन्होंने आपसी बातचीत में कम से कम शब्दों के इस्तेमाल की बात की थी। लोग अब सिर्फ 140 कैरेक्टर्स में अपनी बात कहने की आदत डाल चुके हैं। ऑफिस का देवदास वहाँ काम करने वाली पारो को हर रात फ़ोन करता है। मियाँ चटोरे गर्मियों की छुट्टियों में आम खाने पाकिस्तान जा रहे हैं। या फिर मोटू पहलवान कितनी देर TV के सामने गुजारता है और कौन कौन से चैनल देखता है। ऑरवेल की किताब में ये सब बातें सरकार को पता होती थी। और आज अमरीका भी अपनी तरक्की की बदौलत उस मुकाम पर पहुँच गया है। वैसे भी सरकार आपकी भलाई के लिए आपकी बात सुनती है। अब देखिए, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ताल ठोक कर कहा है कि पिछले महीने उन्होंने तकरीबन 7,000 लोगों के टेलीफोन टैप किए। वैसे 17-18 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में सिर्फ 7,000 की सुनी उन्होंने। यही वजह है मुल्क की तरक्की वैसी नहीं हो पा रही है जैसी होनी चाहिए। अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे भी भारत और पाकिस्तान में लोगों के पास नौकरी हो या ना हो, इन दिनों मोबाइल फ़ोन ज़रूर होता है। बस सरकार को सुनने की आदत डालने की ज़रूरत है, सबके अच्छे दिन आ जाएंगे। थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो मंत्रियों और मुलाजिमों को अमरीका भेज दें। वैसे भी बेचारे इस मौसम में किसी न किसी बहाने अमरीका आने के जुगाड़ में लगे ही रहते हैं। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वॉशिंगटन।
विशेष रिपोर्ट। गर्मी की चपेट में आकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाकों में कई मौतें हुई। सिर्फ आंध्र प्रदेश में गर्मी के चलते मरने वालों की तादाद 2,000 से ऊपर बताई जाती है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें प्रकासम और गुंटूर जिले में हुई, मगर सरकार सिर्फ 1/4 से भी कम मौतों की पुष्टि कर रही है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि चूंकि सरकार ने गर्मी से मरने वालों के मुआवजे की रकम को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिए हैं, इसलिए लोग स्वाभाविक मौतों को भी गर्मी की लहर से जोड़कर बता रहे हैं। मगर हकीकत सरकारी दावों से परे है, क्योंकि गर्मी से मरने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनकी मौतों से राज्य सरकार अनभिज्ञता जाहिर करती है। BBC संवाददाता सलमान रावी ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जाकर इस मामले की पड़ताल की है।
सुबह का वक्त है और गांव के मंदिर से आने वाली सुप्रभातम की आवाज फिजा में गूंज रही है। विजयवाड़ा से 55 किलोमीटर दूर नंदीगामा में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की बस्ती DVR कॉलोनी और आसपास के इलाके में मातम छाया हुआ है। इस इलाके में ही अब तक लू लगने से कई लोग मर चुके हैं। ये सब लोग पिछले दिनों पड़ी भीषण गर्मी के शिकार हो गए, मगर सरकारी महकमा नहीं मानता कि इनमें से किसी की भी मौत लू लगने की वजह से हुई है। नंदीगामा तहसील में तैनात सरकारी अस्पताल के डॉक्टर M. सुरेश बाबू का कहना है कि उनके अस्पताल में लू लगने से बीमार हुए सिर्फ 6 लोग ही भर्ती हुए थे, जो अब ठीक ठाक हैं।
लास्ट मंथ 6 केसेस आर ट्रीटेड सक्सेसफुली, ऑफिशियली 2 केसेस आर ब्रॉट डेड।
सुरेश बाबू कह रहे थे कि जहां 6 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छोड़ दिया गया, वहीं सिर्फ 2 ऐसे मामले आए जब किसी मरीज को मरने के बाद अस्पताल लाया गया। इलाके की तहसीलदार लक्ष्मी प्रसन्ना लू लगने से सिर्फ 1 ही मौत की पुष्टि करती हैं, जबकि तहसील कार्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर DVR कॉलोनी की रहने वाली मधेरा के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है कि उनके और उनके 3 बच्चों का पेट कैसे पलेगा। मधेरा के पति 25 वर्षीय चंदू फेरी लगाकर छातों की मरम्मत करने का काम करते थे।
कुमार चंदू गैस गुड़गुल
छतरी और कीली थालियों वो तो रिपेयर
करेंगे।
रिपेयर करने के लिए जो गांव में जाके करके आया बोलते, आके धूप मार के लग के
कल दूरी पड़ पे
हम क्या फिर के नीचे गिर गया।
गवर्नमेंट
हॉस्पिटल के ले गए, लेके गए डॉक्टर तो ग्लूकोज सेलिन चढ़ा के 10 लहज के बाद वो तो गुजर गया।
यही कुछ हाल 24 साल के बाशा के परिवार वालों का भी है। बाशा की पत्नी करीमुन्निसा का कहना था,
उस दिन रात में थोड़ा सा गैस जैसा आ गया, होने से रात में खाना नहीं खाए।
अच्छा।
ऐसा शॉप करने चले गए, चंदला पार्ट काउंटर में करते वो।
अच्छा।
ब्रांडी शॉप में खाना नहीं खाए, फिर वहाँ से फोन आया जाके वाच बैठे, 3 दिन से खाना नहीं सीधा खाई नहीं, धूप के गर्मी के थोड़ा उल्टी हुई, घर को बुला ले गए। विजयवाड़ा बुला जाना समझते टाइम में चे दम चले गए।
बाशा का भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर M. सुरेश बाबू कहते हैं कि मुआवजे के लिए ये ज़रूरी है कि मरने वाले की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाए। सुरेश बाबू कह रहे थे कि अगर पोस्टमार्टम होता है तो सरकार उस मौत का संज्ञान लेगी, अगर नहीं होता है तो फिर साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि मौत का कारण क्या था। मगर इलाके की तहसीलदार कहती हैं कि मुआवजे के लिए पोस्टमार्टम कराना जरूरी भी नहीं है।
नो नीड, पोस्टमार्टम इज नो नीड, बट इट इज एनफ, वी गो देयर एंड सर्टिफाइड।
लक्ष्मी प्रसन्ना कह रही थी कि उनके यहाँ 3 सदस्य समिति है जो लू से हुई मौतों का सत्यापन करती है। इसमें स्थानीय थाने के प्रभारी, सरकारी डॉक्टर और तहसीलदार होते हैं जो गवाहों और पंचायत के सदस्यों के बयान के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करते हैं। वहीं नंदीगामा के ही रहने वाले वकील रहीमुल्ला का कहना था,
समर स्ट्रोक जो हुआ नहीं कहने का एंक्वायरी करो, जो डॉक्टर ट्रीट करे सो डॉक्टर को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, अगर आप सैटिस्फाई गवर्नमेंट सैटिस्फाई हो तो कॉम्पनसेशन दो, लेकिन गवर्नमेंट बगैर पोस्टमार्टम कॉम्पनसेशन नहीं देते बोले।
पिछले दिनों गर्मी की चपेट में आकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई मौतें हुई। पूरे राज्य में गर्मी की वजह से मरने वालों की संख्या 2000 से ऊपर की बताई जाती है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें प्रकासम और गुंटूर जिले में हुई, मगर सरकार सिर्फ एक चौथाई से भी कम मौतों की पुष्टि कर रही है। नंदीगामा की तहसीलदार लक्ष्मी प्रसन्ना का कहना है कि उनके इलाके में जो मौतें बताई जा रही हैं वो कुछ उन लोगों की है जो उम्रदराज थे, जैसे कासिम पठान और जानवी, मगर नौजवान चंदू और बादशाह की मौतों के बारे में उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। जाहिर है ये दोनों ही उन लोगों में से हैं जो मरे तो हैं, मगर एक तरह से सरकार इनकी गिनती मुर्दों में नहीं करती। सलमान रावी, BBC, नंदीगामा, आंध्र प्रदेश।
गर्मी की चपेट में लोगों की मौतें हो रही हैं, वजह क्या है? और अब कार्यक्रम में उन खबरों पर नजर जिस पर रहेगी आज हमारी नजर।
आज जिन खबरों पर नजर रहेगी उनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन को लेकर आपातकालीन बैठक, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री का भारत दौरा और फ्रेंच ओपन में पुरुषों के सेमीफाइनल प्रमुख हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूक्रेन में लड़ाई को लेकर आपातकालीन बैठक करने वाली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको भी इसके बारे में कीव में मीडिया से बात करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास आज ग्रीस की संसद को संबोधित करेंगे। ग्रीस को कर्ज की एक किस्त आज IMF को चुकानी थी, लेकिन उसने कहा है कि वो ये किस्त अभी नहीं चुका पाएगा। माना जा रहा है कि सिप्रास इस बारे में ही संसद को बताएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो रही है। इसके लिए 2,00,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। कच्चे तेल के उत्पादन पर चर्चा करने के लिए तेल उत्पादक और निर्यातक देशों यानी OPEC की बैठक वियना में होगी। अमरीकी श्रम विभाग मई के लिए रोजगार के आंकड़ों का आज ऐलान करेगा। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रट आज से 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। फ्रेंच ओपन में आज पुरुषों के सेमीफाइनल में एंडी मरे का मुकाबला जोकोविक से होगा, वहीं स्टेन वावरिंका का मुकाबला सोंगा से होगा। बांग्लादेश दौरे से पहले भारतीय टीम फिटनेस टेस्ट के लिए आज कोलकाता पहुंचेगी। आज से मलेशिया के कुआलालंपुर में 3 दिन तक चलने वाले आईफा अवार्ड समारोह की शुरुआत होगी।
और अब कार्यक्रम में बात करेंगे खेल की। बीमारी से जूझ रही सेरेना विलियम्स ने फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में टीमिया बंस्की को कड़े मुकाबले में हरा दिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सेरेना ने लगातार 10 गेम जीते। उन्होंने बंजिंस्की को 4-6, 6-3 और 6-0 से हराया। आज फाइनल में सेरेना विलियम्स का मुकाबला लूसी सफारोवा से होगा। 33 साल की सेरेना इस टूर्नामेंट में लगातार बीमार रही हैं। सेरेना की कोशिश अपना 3रा फ्रेंच ओपन और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का है। वंजस्की को हराने के बाद सेरेना ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे किया। उन्होंने बस ये सोचा कि कड़ी टक्कर दिए बिना वो नहीं हारना चाहती। इससे पहले 13वीं वरीयता प्राप्त सफारोवा ने सर्बिया की एना को हराया था। सफारोवा बीते 34 सालों में फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली चेक गणराज्य की पहली महिला है। और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार।
BBC समाचार। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि हैकरों ने 40 लाख सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी चुरा ली है। ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ने कहा कि उसे अपने कंप्यूटरों पर संदिग्ध गतिविधियों के बारे में अप्रैल में पता चला। फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ आयरलैंड ने माना है कि फीफा ने उसे करीब 50 लाख यूरो दिए थे। फीफा ने यह पैसा इसलिए दिया था ताकि फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ आयरलैंड उस पर 2010 के विश्व कप के क्वालिफायर में एक गलत फैसले को लेकर कानूनी कार्रवाई न करे। मैगी नूडल्स के सुरक्षित होने के दावे करने के बावजूद नेस्ले ने मैगी नूडल्स को बाजार से हटाने का फैसला किया है। नेस्ले ने एक बयान जारी करके कहा है कि उपभोक्ताओं में एक भ्रम का वातावरण बना हुआ है। भारत को विश्व व्यापार संगठन में एक मामले में अमेरिका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। विश्व व्यापार संगठन ने कहा है कि भारत अमरीकी मुर्गियों और अंडों का आयात गलत ढंग से रोक रहा है। अफगानिस्तान की सेना का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने कम से कम 10 तालिबान चरमपंथियों के सिर कलम कर दिए हैं। BBC समाचार।
तो BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाला था राजेश चौहान ने। फिर एक घंटे बाद मुलाकात होने वाली है कार्यक्रम विश्व भारती में। तब तक मोहनलाल शर्मा आपसे अनुमति चाहता है। नमस्कार।